अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है 16वां साल। सोलह साल शब्द सुनते ही हमारे सम्मुख एक ऐसी अल्हड़ किशोरी का चित्र आ जाता है, जिसकी हर अदा निराली, हर चाल मतवाली और जिसकी चंचल तथा भोली अदाएं मन को मुग्ध कर देती हैं। उन्मुक्त हास्य, बात बात में खिलखिलाना, न पहनने में कोई आडंबर, न बोलने में कोई कृत्रिमता, सभी तो प्राकृतिक होते हैं। ऐसी किशोरी को देख कौन ऐसा होगा जो अपने होशवास गुम न कर बैठे। पर कभी कभी ये उम्र किशोरी को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर पटक देती है। ऐसी ही एक किशोरी थी, नाम था माधुरी। रूप के संग संग वाणी में भी माधुर्य खुला था। माता पिता की इकलौती संतान थी। दुनिया के छल प्रपंचों से कोसों दूर अपने ही कल्पना लोक में विचरण करने वाली वो 10वीं क्लास की छात्रा थी। बड़ी मस्त मौला। उसने क्या कभी सोचा था कि उसकी खिलखिलाहट किसी दिन रुदन में भी बदल सकती है? एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी तो अचानक एक कार से धक्का लगा और वो वहीं सड़क पर गिर पड़ी। कार वाला कार लेकर भाग खड़ा हुआ। माधुरी के पैर में काफ़ी चोट आई। बिना सहारे उठना कठिन था। ऐसे में एक नवयुवक ने आकर उसकी सहायता की। वो उसे रिक्शे से उसके घर तक पहुंचा कर लौट गया। युवक मधुकर सुंदर और सुशील था। उसका एमए का आखिरी साल था। वो अभावों में पल रहा था, इस कारण दूसरों के दुखों को बांटना अपना कर्तव्य समझता था। माधुरी उसकी सज्जनता और मधुर व्यवहार पर मुग्ध हो उठी। उस युवक से फिर से एक बार भेंट करने की लालसा उसके हृदय में जगी। भाग्य से दूसरे ही दिन मधुकर उसकी तबीयत पूछने उसके घर आया। उसे देखकर माधुरी खिल उठी। जब तक माधुरी स्कूल जाने योग्य नहीं हो गई, मधुकर कॉलेज से लौटते समय उसका हाल चाल पूछ कर ही अपने घर लौटता था। पैर ठीक होते ही माधुरी स्कूल जाने लगी। रास्ते में उसकी भेंट अक्सर मधुकर से हो जाती थी। इस मित्रता ने कब प्रगाढ़ता का रूप धारण कर लिया, ये उन दोनों में से किसी ने नहीं जाना। एक शाम जब जोरों की वर्षा हो रही थी, मधुकर और माधुरी दोनों ही भीग गए थे। एक झोपड़ी में दोनों ने शरण ली। वहीं माधुरी ने पहल की और स्वेच्छा से अपने को मधुकर को समर्पित कर दिया। मधुकर भी यौवन की बाढ़ में बह गया। उस दिन की गलती का नतीजा माधुरी के सामने आ गया। उसने मधुकर से कहा कि वो गर्भवती हो गई है। मधुकर सन्न रह गया। वो तो स्वयं ही ट्यूशन करके पढ़ाई कर रहा था, माधुरी को कहाँ से खिलाता। उसने माधुरी से कहा, माधुरी मैं अभी तुमसे विवाह किसी प्रकार नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो, तभी मैं तुमसे विवाह करने की सोच सकता हूँ। माधुरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो रोती रोती घर लौट गई। इधर कुछ दिनों बाद ही मधुकर को दिल्ली के किसी फर्म में नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक ने उसे इस शर्त पर नौकरी का वादा किया कि वो उसकी बेटी आभा से विवाह करे। अभावों से जूझते मधुकर ने उसकी बात लाचारी से मान ली। पर उसे ये ज़रूर लगा कि उसने माधुरी के प्रति अन्याय किया है। बहुत दिनों तक जब मधुकर दिखाई नहीं दिया तो माधुरी चिंतित हो उठी। मधुकर से मिलकर वो इस गर्भ को गिराना चाहती थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि मधुकर इलाहाबाद से कहीं चला गया है तो वो बिलख पड़ी। रोते रोते उसने माँ को अपनी स्थिति से अवगत कराया। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, काफ़ी देर हो चुकी है, अब सफाई नहीं हो सकती। माता पिता चिंतित हो गए। माधुरी से क्या कहते, वो तो स्वयं ही परिताप की आग में जल रही थी। वे उसे लेकर पास के गाँव में गए। कुछ महीनों बाद माधुरी ने एक बालक को जन्म दिया। तय ये हुआ कि बच्चे को इलाहाबाद के किसी अनाथालय में चुपचाप छोड़कर वे चले आएंगे। माधुरी को अपनी ममता का गला घोंटना पड़ा। बच्चे के जन्म से ही उसके कान के पीछे एक काला दाग था, जो शायद उसके कलंक की निशानी थी। एक रात माधुरी के पिता बच्चे को चुपचाप अनाथालय में पड़े पालने में डालकर चले आए। माधुरी ने पढ़ने में मन लगाया, उसने एमए पास करके नौकरी कर ली। इसी समय उसकी भेंट पायलट रोहित से हुई। रोहित ने विवाह का प्रस्ताव रखा पर वो राजी नहीं हुई। माता पिता के बहुत समझाने पर उसे विवाह की सहमति देनी पड़ी। रोहित का प्यार पाकर भी वो मधुकर तथा अपने बच्चे को भूल नहीं पाई। मधुकर के प्रति प्यार तथा घृणा का अजीब सा विरोधाभास उसकी जिंदगी से जुड़ गया था। विवाह के 5 साल बाद वो उसी अनाथालय में पहुंची जहां उसका बेटा मौजूद था। अब वो मिठाई तथा कपड़े बांटने अनाथालय पहुंच जाती थी जिससे अपने बच्चे को देख सके। उसका हृदय उसको सीने से लगाकर प्यार करने को छटपटा उठता था, पर अपनी लाचारी पर उसकी आंखें भर आती थीं। वो बच्चा जिसका नाम अनूप था उससे पूछता, आप मुझे देखकर रोती क्यों हैं? वो भरी आंखों से कहती, अनु बेटा, मेरे भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था जो खो गया। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है। अनूप कहता, मेरी माँ होती तो उतना ही प्यार करती जितना आप अपने खोए हुए बेटे को करती हैं। वो भोलेपन से कहता, मेरे तो माता पिता कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ ना। उसका हृदय चीख कर कहता, बेटा तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है पर तुझे हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है। पर वो अपने को नियंत्रित कर लेती। माधुरी के विवाह को 8 साल हो चुके थे पर उसके कोई संतान नहीं हुई। उसने सोचा, अगर वो अनाथालय से अपने बच्चे को गोद लेती है तो किसी को संदेह नहीं होगा और उसका बेटा उसके पास आ जाएगा। माधुरी ने अपने पति रोहित से कहा, रोहित अब शायद हमारी संतान नहीं होगी, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। रोहित ने उत्तर दिया, माधुरी हम दोनों में कोई खराबी नहीं है, बच्चा हो भी सकता है। उस समय जब तुम्हारा अपना बच्चा हो जाएगा तो तुम गोद लिए बच्चे की तरफ उदासीन हो जाओगी। माधुरी ने उत्तर दिया, रोहित मेरा विश्वास करो, मैं उस बच्चे को उतना ही प्यार दूंगी जितना अपने बच्चे को, पर मैं जन्मा बच्चा गोद नहीं लूंगी। 8-9 साल के बच्चे को हम विधिवत गोद लेंगे और बच्चा भी किसी अनाथालय से लेंगे, क्योंकि अभावों से पले बच्चे को अगर हम गोद लेंगे और उसे प्यार देंगे तो वो भी वृद्धावस्था में हमारी देखरेख करेगा। पति रोहित ने कहा, ठीक है, कल ही हम दोनों चलकर जो भी बच्चा तुम्हें पसंद होगा गोद ले लेंगे। खुशी के मारे माधुरी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रात उसे नींद नहीं आई, सुखद कल्पनाओं में वो खोई रही। अब वो अपने कलेजे के टुकड़े को दिन रात आंखों के सामने देखेगी, उसे हृदय से लगाकर प्यार से उसका माथा चूमेगी। सुबह वो बहुत जल्दी तैयार हो गई। प्रसन्नता के कारण उसका चेहरा दमक रहा था। उसे इतना प्रसन्न देखकर रोहित ने कहा, माधुरी इतना खुश तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अगर बच्चे के लिए तुम इतनी उत्सुक थी तो हम बहुत पहले बच्चा गोद ले लेते, तुमने कहा क्यों नहीं? माधुरी शर्मा कर बोली, ये बात तो आपको पहले ही समझ लेनी थी, बच्चे के बिना घर कितना सूना लगता है। जैसे ही वे दोनों अनाथालय पहुंचे, माधुरी का दिल पल्लियों उछलने लगा। सभी बच्चों को बुलाया गया। अनूप को न देखकर माधुरी ने घबराकर मैनेजर से पूछा, एक बच्चा और भी मैंने देखा था, उसका नाम अनूप था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैनेजर हंसकर बोला, बहन जी वो बच्चा बहुत भाग्यवान है, एक रईस अपनी पत्नी के संग आए थे, वो कनाडा जा रहे थे, उन्होंने विधिवत अनूप को गोद लिया था, इस समय तो वो वायुयान में बैठा होगा। माधुरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो गिरते गिरते बची। उसकी ये हालत देखकर रोहित घबरा गए। माधुरी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर ले चलिए। पति रोहित तो ऑफिस चले गए पर पूरा दिन माधुरी अपने बच्चे की याद में तड़पती रही, जिसे शायद वो अब कभी नहीं देख पाएगी। कुछ दिनों बाद ही उसके पति रोहित का वायुयान दुर्घटना में देहांत हो गया। उसे घर काटने को दौड़ने लगा। पैसे की उसके पास कमी न थी, उसकी एक ही लालसा थी कि एक बार अपने बच्चे को देख लेती। वर्षों बीत गए। माधुरी का मन कहता था कि वो अपने बच्चे से ज़रूर मिलेगी। माधुरी पति का शोक भुलाकर बच्चे की खोज में लग गई। इतने बड़े संसार में ये कार्य सरल नहीं था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ज़्यादा करके वायुयान से यात्रा करती, कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। अब भी उसके रूप में जादू था, लगता था वो 25 से कम की है। आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा उसने उम्र को भगाने में सहायता ली थी। कटे बाल, गोरा रंग, सांचे में ढला शरीर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। आधुनिक परिधानों में जब वो काला चश्मा लगाकर चलती तो लोगों की निगाहें टिक जाती थीं। एक दिन माधुरी कनाडा जा रही थी तो वायुयान में एक नवयुवक को देखकर वो धक से रह गई। नवयुवक की शक्ल हूबहू मधुकर से मिल रही थी, उसका पहला प्यार जिसे चाह कर भी वो भुला नहीं पाई थी। वो उसके धोखेबाजी से उसे घृणा करती थी, पर शायद अब भी उसे प्यार करती थी। पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता, वो उसे एक टक देखे जा रही थी। यही तो उसका लाल था जिसे वो वर्षों से खोज रही थी। उसका रोम रोम खुशी से खिला जा रहा था। उसने सोचा किसी प्रकार इससे मित्रता हो जाए तो वो उसके कान के पीछे का काला दाग देख लेती, तभी उसे पूर्ण विश्वास हो जाता कि वो उसी का बेटा है। नवयुवक मुग्ध भाव से उसे निहारे जा रहा था। पुरुष की दृष्टि स्त्री बहुत जल्दी पहचान लेती है। उसने सोचा जरा अपने बेटे को छकाना चाहिए। यकायक वो नवयुवक अपनी सीट से उठकर उसके पास आकर बोला, क्या मैं आपके पास वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? माधुरी मुस्कुराकर बोली, ये वायुयान मेरी संपत्ति तो है नहीं, आप जहाँ चाहें खुशी से बैठ सकते हैं। नवयुवक उसे धन्यवाद कहकर बैठ गया। थोड़े ही समय में नवयुवक उससे ऐसे घुल मिल गया मानो वर्षों की जान पहचान हो। माधुरी से उस नवयुवक ने अनुरोध किया कि क्या वो उसके पिता से मिलने का कष्ट करेगी, उसे देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न होंगे। माधुरी सहर्ष राजी हो गई क्योंकि वो देखना चाहती थी कि नवयुवक के पिता कौन हैं। रास्ते में माधुरी ने नवयुवक से कहा कि वो एक बच्चे की माँ है, वो अपने बच्चे को वर्षों से खोज रही है। नवयुवक ने पूछा, आप अपने बच्चे को वर्षों बाद पहचानेंगे कैसे? माधुरी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैं लाखों में से पहचान लूँगी, क्योंकि जन्म का एक निशान उसके शरीर में है जिसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नवयुवक ने फिर पूछा, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका बेटा मिल जाएगा? माधुरी खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके मोती जैसे दांत चमक उठे। वो बोली, वो जल्द ही मुझे मिलने वाला है। नवयुवक आश्चर्य से उसे निहारता रहा। नवयुवक जल्द से जल्द पहुंचकर अपने पिता को अपनी पसंद की स्त्री से मिलवाना चाहता था। जैसे ही माधुरी ने उसके पिता को देखा तो वो जड़ हो गई। वो विस्फारित आंखों से उसे ताकती रही। मधुकर एक सेकंड माधुरी को निहारता रहा, फिर बिजली की तेजी से लपक कर उसने माधुरी को हृदय से लगा कर कहा, माधुरी तुम यहाँ कैसे? आनंदातिरेक से उसकी आंखें चमकने लगीं, फिर उसकी आंखों से टपा टप आंसू गिरने लगे। वो सिसकता हुआ बोला, माधुरी मुझ धोखेबाज को माफ़ करो, मैंने तुम्हें दारुण दुख दिए हैं। अपनी प्रेयसी को पिता के आलिंगन में देखकर नवयुवक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने पिता को धक्का देकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, यह आपकी होने वाली बहू है, मैं इसे इसलिए लाया था कि आप इससे मिल लें, पर आप इतनी नीचता पर उतर आएंगे, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, आप मेरे पिता नहीं है ना? अनाथालय से गोद लिए बच्चे के लिए आपके हृदय में कहाँ से प्यार आ सकता है? माधुरी ने गंभीर स्वर में कहा, छी छी अन्नू, अपने पिता से तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। अनूप चौंक कर बोला, आपको मेरे बचपन का नाम कैसे मालूम हुआ? माधुरी हंसकर बोली, भूल गए उस स्त्री को जो अनाथालय में आकर तुम्हें देखकर रोती थी? जब तुम पूछते थे वो क्यों रोती है, तब वो स्त्री उत्तर देती थी कि मेरे भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा था जो खो गया है, उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी है, इस कारण तुम्हें देखकर उसकी याद आती है। नवयुवक अनूप बोला, वो आप ही थीं? वैसे वायुयान पर आपको मुझे देखकर लगा था कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है। आपको करीब 12 साल पहले मैंने देखा था, आप तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हैं। माधुरी ने आगे बढ़कर अनूप को छाती से लगाकर कहा, अनू तू ही मेरा बेटा है। खुशी की अधिकता के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनु ने पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? माधुरी उदास होकर बोली, तेरे जन्म से पहले ही वो मुझे छोड़कर चला गया था, मैं बिन ब्याही माँ थी, इसी कारण तुझे अनाथालय में छोड़ना पड़ा, मैं अबला समाज से कैसे टक्कर ले सकती थी, इस कारण अपने विवाह के पश्चात मैं वर्षों तुझे देख नहीं सकी। एक दिन मैं बहाने से अनाथालय पहुंच गई, वहां तुझे देख मेरा दिल खुशी से नाच उठा, तब से मैं बराबर तुझसे मिलती रही, एक दिन जब मैं अपने पति के संग तुझे गोद लेने पहुंची तो तू कनाडा अपने गोद लिए पिता के संग रवाना हो चुका था। अपने पति की मौत के बाद मैं बराबर तुझे खोजती रही। अनूप गुस्से में चीखा, अगर मेरे धोखेबाज पिता मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा। माधुरी ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, नहीं नहीं अनू, ऐसी अशुभ बातें मुंह से ना निकालो। फिर भरी आंखों से कहा, वो जहां भी रहें सुखी रहें। मधुकर की आंखों में पश्चाताप के आंसू तैर रहे थे। वह अनूप के पास आकर बोला, अनू बेटे मुझे गोली मार दे, मैं ही तेरा धोखेबाज नालायक पिता हूँ। अनूप ने विस्फारित आंखों से माधुरी की तरफ देखा। माधुरी ने सहमति से सिर हिलाया। मधुकर बोला, माधुरी मुझे माफ़ करो, मैंने अक्षम्य अपराध किया है। विश्वास मानो, अपनी गलती के लिए मैं पश्चाताप की आंख में जलता रहा। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा विवाह हो गया है। अपनी अमीर झगड़ालू पत्नी से मेरी एक दिन भी ना पटी। पैसे के लोभ में मैंने अपना जीवन नरक बना लिया था। पैसे और स्त्री से मुझे घृणा हो गई थी। तभी 15 साल से एकाकी जीवन जी रहा हूँ। मेरी पत्नी के बच्चा नहीं हुआ, इसका कारण वो मेरी खराबी बताती थी। हार कर एक दिन मैंने कह दिया कि अगर मैं इसके योग्य नहीं हूँ तो कोई बच्चा गोद ले ले। इस बीच मेरा तबादला इलाहाबाद हो गया। एक दिन वो अनाथालय से अनूप को ले आई। अनूप की शक्ल मुझसे मिलती थी, इसका कौतूहल भी उसके मन में था। वो अक्सर बच्चे की शक्ल से मेरी तुलना करके गंभीर हो जाती। मुझे क्या पता था कि अनूप मेरा ही बेटा है। अनूप के आने से मेरे घर में खुशियों की बहार आ गई। मैं तो अनूप में इतना रम गया जैसे वो सचमुच में मेरा बेटा हो। अनूप के प्रति मेरा इतना प्यार देखकर मेरी स्त्री को कभी कभी संदेह हो जाता, पर वो इस बात का संतोष कर लेती थी कि अनूप को वही लाई है। अगर मैं लाता तो उसका संदेह करना स्वाभाविक था। धीरे धीरे वो भी अनूप को प्यार करने लगी। अनूप के आने से मेरी पत्नी का झगड़ा करना भी कम हो गया। एक दिन अचानक उसे हृदय का दौरा पड़ा। मरते समय उसने बड़े करुण स्वर में पूछा, सच कहना, अनूप तुम्हारा बेटा तो नहीं है? मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, विश्वास मानो, मैं नहीं जानता ये किसका बेटा है। ये सुंदर था, चपल था, इस कारण इसे प्यार करने का मन करता था। तुम अपने दिल से इस संदेह को हटा दो। उसकी आंखों में मुझे अपार शांति दिखाई दी। उसने अनूप का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, मेरे अनूप को माँ तथा पिता दोनों का प्यार देना। एक विनती है, मेरे अनूप के लिए सौतेली माँ मत लाना। ये कहते कहते वो चिर निद्रा में सो गई। तब से मैं ही अनूप का पिता तथा माँ दोनों हूँ। भगवान को हमें मिलाना था, सो इस प्रकार मिलाया। न अनूप तुम पर अनुरक्त होता, न तुम आती। अनूप का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वो बोला, पापा मैंने सचमुच पाप किया है। पर माँ को देखकर मेरा मन उनकी तरफ खींचता चला गया। शायद खून ने खून को पहचान लिया था। तुमसे आज कहता हूँ, जब मेरी माँ अनाथालय में मेरे पास आती थी तो मेरा मन करता था कि इनकी गोद में अपना सिर रख दूँ और ये मुझे प्यार से चूम लें। पर मैं अनाथ ये कल्पना करके ही रह जाता था। अगर ये 2 दिन पहले आ जाती तो मैं इन्हीं का बेटा, इन्हीं के पास हमेशा के लिए रह जाता। पर पापा, भगवान को तो आपको भी अपने बेटे और पत्नी से मिलाना था, इस कारण ये इंद्रजाल रचकर उसने हम सबको मिला दिया।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparadio.com की प्रस्तुति।